अध्याय 13। इस हाथ दे उस हाथ ले। खंड 1। राय साहब साधु राम के आलीशान मकान के नीचे की दुकान में किराएदार मिठू कोयले वाले ने दुकान खोली और ऊपर खिड़की की ओर मुंह उठा ऊंचे सर में गा उठा, इलाही ख्वाब में सबको न जाने कौन आता है, जलाने चुटकियां लेने रुलाने कौन आता है। पूस का सवेरा था और 7 बजे का समय, रात भर गहरी वर्षा होकर सुबह पानी थम सा गया था, हवा में सर्दी भी बढ़ गई थी। जाड़े के डर से फटा पुराना कम्बल ओढ़े राय साहब के मकान में निचले खंड की एक कोठरी में संपादक शर्मा जी सिकुड़े पड़े थे। मिठू के दर्द भरे गले की आवाज उनके कानों में आई। मिठू ने गजल का दूसरा शेर कहा, अगर तकदीर हो सीधी तो तुम हो जाओगे सीधे, रहो खामोश देखो तो मनाने कौन आता है। शर्मा जी मिठू की गजल का एक एक शब्द जैसे अनुभव कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था जैसे मिठू नहीं मिठू की आत्मा गा रही थी। उन्होंने सोचा कि मिठू की उम्र अभी कुल 16-17 साल की होगी, यदि वह कोयला बेचना छोड़कर किसी गुनी से गान विद्या का अभ्यास करे तो कौन कह सकता है कि एक दिन वह कुशल कलाकार न हो जाएगा। इसके हृदय में संगीत कला का बीज वर्तमान है, यदि अनुकूल परिस्थिति मिले तो वह प्रस्फुटित और प्रलपित हो सकता है, अन्यथा कोयले का व्यवसाय हो तो उसे जला ही डालेगा। बाहर मिट्टू गा रहा था, भीतर शर्मा जी उसके भविष्य के संबंध में कल्पनाएं कर रहे थे। इतने में ऊपर खिड़की खुली और मधुर स्वर में किसी ने कहा, मिट्टू गंगो आ रही है, इसे शेर भर कोयला दे दो। मिट्टू ने गाना बंद करके जवाब दिया, बहुत अच्छा बहू जी, कितना कोयला, शेर भर ना? हाँ, जवाब मिला और खिड़की बंद हो गई। तत्पश्चात तराजू बटखरे की आवाज, गंगो के पैर की चूड़ियों की छनकार और इलाही ख्वाब में सबको न जाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। खंड 2। राय साहब साधु राम हर तरह से असाधारण व्यक्ति हैं। साधारण व्यक्ति खाने भर को भी कठिनाई से कमा पाते हैं। राय साहब की कमाई इतनी ही है कि खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और बैंक में भी मोटी रकम जमा कर ले। साधारण व्यक्ति के लिए एक भार्या का भरण पोषण भी भले ही समस्या बन जाए, परंतु राय साहब 2 विवाहिता पत्नियों को सचमुच रानी बनाकर रखते हैं, और को ही नहीं अभी तो अपने कारखाने की मजदूरियों तक को वह पदस्थायी रूप से देने को तैयार रहते हैं। राय साहब की दोनों ही पत्नियां सुंदर है, एक श्यामा है और दूसरी गौरी, एक चंचला है दूसरी परम गंभीर। श्यामा अत्यंत गंभीर और निर्भीक है, अर्थात गृह प्रबंधिका अपनी विधवा ननद चमेली से वह बिल्कुल नहीं डरती। उसकी निर्भीकता तथा उस समय उस सीमा तक पहुंच चुकी है जिसे बेहाई कहते हैं। गौरी अत्यंत लजीली है, उसे बोधी भी कह सकते हैं। श्यामा का नाम प्रेमवती, गौरी का नाम है सुधा। प्रेमवती का स्वभाव सर्वथा राय साहब के स्वभाव के अनुकूल है। जब राय साहब अपने कारखाने और विभिन्न दुकानों का निरीक्षण करके निकलते हैं तो प्रेमवती भी आस पड़ोस के फेरी लगाने निकल पड़ती है। राय साहब 16 आने उसी के वशीभूत हैं। प्रेमवती ने शहर में कई रिश्तेदारियां भी खोज निकाली हैं। ब्रह्मनाल में ताऊजी रहते हैं तो 80 पर फुफा जी, जिनके यहां जाकर वह 2-2, 4-4 दिन मेहमान रहती है। बर्तन साफ करने से लेकर रसोई पकाने तक का काम सुधा के जिम्मे है। यह दूसरी बात है कि राय साहब ने अपने कारखाने के सूरत नामक एक मजदूर की बालिका पत्नी गंगो को बर्तन मांजने के काम में सुधा की सहायिका नियुक्त कर दिया है। सुधा अपनी सौत प्रेमवती से उतना ही डरती है जितना बाघिन से बकरी। पति के समीप उसका मूल्य कृतदासी से भी घटकर है। छोकरी दासी गंगो के मुंह से सुनकर शर्मा जी सुधा के बारे में इतनी ही जानकारी प्राप्त कर सके थे। दूसरे दिन रविवार था, बादल भी खुल गए थे और लोगों को हफ्ते भर बाद सूर्य का दर्शन मिला। शर्मा जी को दफ्तर जाना नहीं था। जब दोपहर को राय साहब अपनी दुकान पर चले तो उन्होंने भी धूप खाने के लिए उनसे छत पर जाने की अनुमति मांगी। राय साहब को ऐसे काम बहुत प्रिय थे जिनसे गांठ का पैसा खर्च किए बिना ही एहसान जताने का अवसर मिलता हो। उन्होंने अनुमति दे दी। शर्मा जी छत पर जाकर धूप खाते हुए एक ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ने लगे। उपन्यास में अलाउद्दीन खिजली के नामर सेनापति मलिक काफूर की मर्दानी का विशद वर्णन था। शर्मा जी की आदत किसी भी पुस्तक को मन में नहीं जोर से पढ़ने की है। उन्होंने पढ़ा कि रानी कमला काफूर से कह रही थी कि तुम नामर्द हो, तुम नारी की मर्यादा क्या जानो, नामर्द अपनी भार्यता को दूसरे के हाथ सौंप देता है, मैं तो फिर भी पर नारी हूँ। इतने में आवाज आई, ठीक है, बहुत ठीक। शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, देखा कि छत पर प्रेमवती खड़ी है और कह रही है ठीक है बहुत ठीक। इस नारी की वाचालता पर उन्हें क्रोध आया और अग्निमय नेत्रों से उसे देखते रह गए। इस पर वह मुस्कुराकर बोली, बाबू क्या देखते हो, यह कौन सी किताब है? शर्मा जी को निर्लज्जता पर लज्जा आई, उसने पुनः कहा, कौन सी किताब है बाबू, बताते क्यों नहीं? एक उपन्यास है, उन्होंने उत्तर दिया। उपन्यास तो अच्छा जान पड़ता है, एक दिन के लिए मुझे भी देना। दोगे ना? आज ही तो लाया हूँ, बात टालने के लिए उन्होंने कहा। तो मैं अभी थोड़ी ही मांग रही हूँ, खत्म कर लेना तब देना। कब तक खत्म कर सकोगे? अभी तो पढ़ना प्रारंभ किया है, उन्होंने कहा। घंटे भर से तो पढ़ रहे हो, कुल 2 पन्ना पढ़ पाए, बहुत धीमा पढ़ते हो, कहकर उसने अविश्वास से हंस दिया। शर्मा जी झेपे, परंतु तुरंत ही संभल कर बोले, बस किताब भर हाथ में थी, ख्याल दूसरी ओर था। ऐसी अच्छी किताब पढ़ने में भी बाबू, बुरा ना मानना, तुम्हारी हिंदी में कुछ नहीं है, वही सीता वही सावित्री वही आदर्श का पचड़ा। आपको आदर्श अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगने की बात नहीं है, बात यह है कि आदर्श मर गया है। जिस तरह बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी जब तक वह सड़ ना जाए लिए लिए फिरती है, वैसे ही तुम हिंदी वाले आदर्श का मुर्दा लिए डोल रहे हो। अच्छा आज यहीं तक। वह नीचे चली गई। शर्मा जी उसकी विकृत प्रतिभा पर आश्चर्य करते रह गए। खंड 3। उसी दिन शाम को प्रेमवती शर्मा जी की कोठरी में आई। शर्मा जी दूसरे दिन निकलने वाले अखबार के लिए अग्रलेख लिख रहे थे। शीर्षक रखा था आदर्श और यथार्थ। आते ही प्रेमवती ने कहा, बाबू साड़ी वाला आया है, उसकी एक साड़ी मैंने पसंद की है। राय साहब घर पर है नहीं, आप 25 रुपए मुझे दे दो, उनके आते ही लौटा दूंगी। उसकी मांग सुनकर शर्मा जी बड़े असमंजस में पड़े। कुल 80 रुपए मासिक वेतन पाने वाला 25 रुपए का जी कैसे दे दे? कार करने जा ही रहे थे कि उसने कहा, अगर रुपए न हो तो रहने दीजिए, फिर कभी देखा जाएगा। दुख इतना ही है कि साड़ी बहुत अच्छी है और कम दाम में मिल रही है। उनके के चेहरे पर वेदना की रेखाएं स्पष्ट उमड़ आई। शर्मा जी ने अभिभूत होकर कह दिया, नहीं नहीं मैं रुपए देता हूँ। और पेट काट कर संचित 100 रुपए के अपने स्थायी कोष से 25 रुपए निकाल कर उन्होंने उसके हाथ में रख दिए। उसने मुस्कुरा कर धन्यवाद कहा और पलक मारते ही तूफान की तरह वह बाहर चली गई। इस प्रकार 1 महीने के भीतर उसने शर्मा जी से प्राय 25 रुपए ऐड लिए। फलता उन्हें उसके चरित्र पर जो संदेह हुआ था वह दिनों दिन बढ़ता ही गया। वह मन ही मन पर्दे में कैद उसकी सकुचली सौ सुधा के चरित्र और स्वभाव से उसके चरित्र और स्वभाव की तुलना करते और यह सोचकर दुखी होते कि प्रेमवती किस प्रकार मौज उड़ा रही है, बेचारी सुधा कितने कष्ट में है। छुट्टी के दिन वह अपनी कोठरी में बैठे इन्हीं बातों पर विचार कर रहे थे कि प्रेमवती पुनः उनके पास आई। उनके पास का आगमन केवल रुपया ही लेने के लिए होता था, अतः आज भी उसके आने का उद्देश्य वह समझ गए और उसके कुछ कहने से पहले ही जबरदस्ती हंसते हुए बोल उठे, बड़ा अच्छा किया जो मेरे रुपए ले आई। इधर कई दिनों से मुझे रुपए की बड़ी आवश्यकता भी थी, मैं रुपए देने नहीं और भी रुपए लेने आई हूँ। उसने अत्यंत निर्लज्जता पूर्वक हंसते हुए कहा, राय साहब आपको जेब खर्च कम देते हैं क्या? उसने गंभीर होकर पूछा, मैं आपको किस राजा साहब से कम समझती हूँ? उसके मुख पर वैसे ही निर्लज मुस्कान थी। इसका मतलब? शर्मा जी ने कड़ाई से पूछा, तुम इतने मूर्ख हो? उसने कहा और दरवाजे का रास्ता लिया। शर्मा जी ने झपट कर उस राह रोक ली। वह कतरा कर बगल से चली। उन्होंने डांट कर उससे रुकने के लिए कहा। वह हाँपती हुई कुर्सी पर बैठ गई और बोली, ओफ सोफ कुछ नहीं, बताइए आप मेरा रुपया देंगी कि मैं राय साहब से कहूँ? शर्मा जी का कंठ स्वर अनावश्यक रूप से कठोर हो गया था, परंतु उसने उसकी तनिक परवाह न की। वैसे ही बोली, राय साहब से क्या पाओगे? वह अलाउद्दीन है, तुम मलिक काफूर। क्षण भर वह मौन रही, परंतु शर्मा जी के बोलने के पहले ही कुर्सी से उठते हुए बोली, अच्छा जाती हूँ, लेते बने तो राय साहब से रुपए ले लेना। वह चलने लगी। शर्मा जी के मुंह से निकला यह त्रिया चरित्र, उसने सिर घुमाकर हंसते हुए जवाब दिया, नारी त्रिया चरित्र न करेगी तो क्या पुरुष चरित्र करेंगे? और दूसरे ही क्षण वह उनके कमरे से बाहर चली गई। खंड 4। दूसरे दिन 4 घटनाएं एक साथ हुई। राय साहब ने पिछली रात घर लौटने पर शर्मा जी को सवेरा होते ही मकान खाली करने का नादिरशाही अथवा खिलजबी आदेश दिया। उक्त आदेशानुसार दूसरे दिन बड़े ही तड़के उठकर शर्मा जी अपना अल्प असबाब समेटकर उसकी गठरी बांध रहे थे कि ऊपर गृह प्रबंधिका चमेली देवी का हाहाकार क्रंदन सुन पड़ा। वे रो रो कर चिल्ला रही थी, 7 फुट की नाक कट गई और राय साहब उन्हें चुप रहने के लिए डांट रहे थे। सुधा की दासी गंगो दौड़ी हुई शर्मा जी की कोठरी में आई। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ है रे? उसने बताया कि छोटी रानी जी का घर में कहीं अता पता नहीं। सुधा के कष्टों का स्मरण कर शर्मा जी को दुख हुआ। उस घर में गंगो ने उनकी बड़ी सेवा की थी और शर्मा जी उस घर से सदा के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे 1 रुपया पुरस्कार देते हुए उससे सास ने पूछा, तुम्हारी मालकिन तो कहीं चली गई गंगो, अब तुम इस घर में किसके पास रहोगी? गंगो ने बड़े ही भोले रूप से कहा, अब मैं अपने उनके साथ रहूंगी। शर्मा जी की गठरी बन चुकी थी, उसे एक कोने में रख स्नान के लिए नलकी और चले। देखा राय साहब आज बड़े सवेरे ही बाहर चले जा रहे हैं। स्नान में उन्हें कुछ विलंब हुआ। 6 महीने इसी नल के नीचे नियमित स्नान के बाद आज यह सोचकर उनका चित्त भावुक हो रहा था कि कल से नहाने के लिए कोई दूसरा घाट मिलेगा। इसी समय आंगन में जोर से शोर हुआ। शर्मा जी शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल आए और उन्होंने देखा कि बीच आंगन में प्रेमवती राय साहब के एक मामेरे भाई को कोई भत्ता मजाक करने का पुरस्कार चप्पलों से दे रही है। हंसी दबाए हुए शर्मा जी अपनी कोठरी में घुस गए। आंगन में ही प्रेमवती ने पूछा, अभी गए नहीं? उन्होंने उसकी बात का उत्तर दिए बिना ही कपड़े पहने गठरी उठाई और गली का रास्ता लिया। बाहर निकलते ही देखा कि मिट्टू की दुकान के तख्ते के नीचे एक छोटा सा लिफाफा पड़ा है। अविवेकपूर्ण ढंग से कौतूहलवश उन्होंने उठा लिया और त्यों ही देखा कि मिट्टू गली की मोड़ घूमकर दुकान पर आ रहा है। शर्मा जी ने पैर बढ़ाया। मिट्टू दुकान पर पहुंचकर ताला खोलने और ऊपर खिड़की की ओर मुंह उठाकर गाने लगा, गरचे बेजार तो है पर मुझे कुछ प्यार भी है, साथ निगार के पर्दे में कुछ इकरार भी है, दिल भला ऐसे हो ए दर्द ना क्यों कर देखे, एक तो यार है और उस पे तरहदार भी है। उधर शर्मा जी और भी आगे बढ़कर लिफाफा खोल पत्र पढ़ते हुए चले। पत्र में लिखा था, जनाब आली जा रही हूँ, आपकी तीनों किताबें साथ लिए जा रही हूँ, इसलिए कि जिंदगी का पहला पाप और आखिरी भी हमेशा याद रहे। जैसा कि मेरा ख्याल है, अगर ये पाप जिंदगी का पहला और आखिरी पाप हुआ तो यह इकलौता पाप कहा जाएगा। बेटा चाहे कपूत हो या सपूत प्यारा होता है, पर अगर कहीं वह इकलौता हुआ तो फिर क्या कहना, यह मेरा इकलौता पाप है इसलिए मुझे बहुत प्यारा है। मैंने पाप किया था आपको दिल देकर, जवानी वासना और अभाव की व्यवस्था ने मेरे दिल में बदले की आग सुलगा दी। बदले की आग जो न करा दे, इसी ने सोने की लंका जला दी थी। मैं समझती थी मेरा शौहर मेरी सौत को प्यार करता है, बस बदले की आग भड़क उठी, उसे बुझाने के लिए पानी की जरूरत थी। चाहे वह समुद्र का खारा पानी होता, चाहे वह गंगा का पवित्र पानी होता, चाहे वह नाली का गंदा पानी होता, इसी समय तुम मिल गए नाली के गंदे पानी की तरह। मुझे प्यास बुझानी थी, स्वाद थोड़े ही लेना था, मैंने गंदे पानी से होठ लगा लिया। अब प्यास बुझ जाने पर मतली आती है, असलियत भी खुल गई। मेरा शौहर दुनिया की किसी भी औरत को कभी प्यार नहीं कर सकता, वह तो खुद को अपनी खुद ही को प्यार करता है बस। पत्र पढ़कर जैसे शर्मा जी के गाल पर तमाचा पड़ा कि पीड़ा से चौंकते उन्होंने सिर उठाया तो क्या देखा कि गली के मोड़ पर बेनी तमोली की दुकान पर बैठी गंगा तमोली से राय साहब गुल गुल कर बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि राय साहब की बात सुनकर गंगा घर के भीतर चली गई और राय साहब उसे सुनाते हुए कहकर कि अब भी मेरे कारखाने में तुम मजदूरियों की मेठ बन सकती हो, अपनी दुकान की ओर बढ़े।